एक झलक को तेरी पाया नूर रूहानी तेरा। सजदे में रहे अब न जाए कहीं, मिला जो हमें रहनुमा। चाहे मजहब अनेक, सिखाया रूहों को पाक बनना और नीक। वादा करते हैं हम एक रहेंगे, हम मिला के चलेंगे कदम से कदम।
ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी भाई बहनों का पुनः आज के संडे टॉक में फिर से स्वागत है। और आज हम उस आवाज के साथ हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जिसने कई आत्माओं को अपनी आवाज, अपनी सुरीली आवाज से परमात्मा के साथ मिलन कराया है। आप सभी उनको जानते हैं, डॉक्टर दामिनी बहन, हमारी प्यारी दामिनी बहन जी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। ओम शांति बहन जी।
ओम शांति, थैंक यू जी।
ओम शांति। और आप सभी दामिनी बहन को बहुत अच्छे से जानते हैं, सबने उनके गीत भी जरूर सुने होंगे। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, बहन जी ना सिर्फ सुरीले गीत गाती हैं लेकिन वो उसको खुद कई बार लिखती भी हैं और कंपोज भी करती हैं, म्यूजिक भी देती हैं। यानी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, सिंगर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं। और बहन जी के लिए बता दें, आपने शुरू में भी कई कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में, और उसमें जीते भी हैं। आप दूरदर्शन का एक रियालिटी शो जो सदाबहार है उसमें भी आप पार्टिसिपेंट रहे हैं। उदित नारायण, सुरेश वाडकर जैसे जो नामी हमारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं उनके साथ आपने गाने भी गाए हैं और आपके कई एल्बम्स निकले हैं जिन्हें आप अवेकनिंग और पीस ऑफ माइंड चैनल पर सुनते ही रहते हैं। और बहन जी की एक और विशेषता है, वो सिर्फ गाते ही नहीं हैं लेकिन वो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, एरोबिक्स ट्रेनर भी हैं।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज बंद हो गई है।
मेरी आवाज आ रही है अभी?
जी
ओके, तो यानी बहन जी के साथ आज हम एक बहुत सुंदर विषय पे फिर से हम आज आएंगे, हीलिंग पावर ऑफ म्यूजिक। कैसे परमात्मा से हम मिलन बनाएं इस म्यूजिक के द्वारा, कैसे अपने को अपलिफ्ट करें, कैसे खुद को हील करें, अंदर से क्लींस करें, क्योंकि शायद म्यूजिक संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हर एक को जोड़ता है, हर एक के दिल को एक खुशी देता है। तो आज हम बहन जी से इसी विषय पर सुनेंगे। ओम शांति बहन जी।
शायद शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। संगीत की जब बात होती है तो संगीत एक ऐसी चीज है जो धर्म, जाति या कोई भी भाषा से भी परे है। सारी दुनिया में अगर हम देखें कि सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध भाषा कोई है तो मैं कहूंगी वो संगीत की भाषा है। चाहे हम सामने वाले को जानते हैं, नहीं जानते हैं, उसकी भाषा हम पहचानते हैं, लेकिन जब वो गाते हैं, जब उनका गीत हम सुनते हैं, जब वो म्यूजिक की रीति से अपनी फीलिंग्स को हमारे सामने रखते हैं तो हमें उनकी भावनाएं समझ आती हैं, बहुत स्पष्ट रीति से समझ आती हैं। तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जो दिलों से दिलों तक जोड़ने का, और जैसे बहन जी ने कहा कि विशेष करके परमात्मा से जुड़ने का एक दिव्य साधन है। संगीत को हम शायद थोड़ा सा भिन्न समझते हैं हमारे जीवन से, लेकिन संगीत हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है। पक्षियों की चहचहाहट में भी संगीत छुपा है, सूखे पत्तों की सरसराहट में भी संगीत छुपा हुआ है, गिरता हुआ झरना उसके पानी में संगीत है, नदियों के बहते पानी में भी संगीत सुनाई देता है, समंदर की लहरों में भी संगीत सुनाई देता है। यानी कि प्रकृति के कण कण में भी संगीत समाया हुआ है। हमारे दिल की धड़कन क्या है, इट्स ऑल्सो म्यूजिक, है ना। टाइम टू टाइम बीट ऑन बीट बजती है। तो संगीत भिन्न नहीं, लेकिन हमारा जीवन, मैं तो अपने जीवन को ही संगीत के रूप में देखती हूँ। और संगीत परमात्मा का दिया हुआ हम सभी मनुष्य आत्माओं के लिए एक अलौकिक वरदान है। संगीत साधना है, एक ऐसा साधन भी है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। अब देखो, सर्वधर्म का जो सार है और सबके जीवन का जो आधार है, जिसको जो सनातन धर्म का शास्त्र है, जिसको कहते हैं गीता, इस छोटे से अक्षर में गीता गीत छुपा हुआ है। शास्त्रों से भी संगीत जुड़ा है, मनुष्य आत्माओं के जीवन से भी संगीत जुड़ा है, प्रकृति से भी संगीत जुड़ा है। ये पूरी सृष्टि संगीत से जुड़ी हुई है। वेद शास्त्रों को भी हम जब देखते हैं तो सामवेद, आपने नाम सुना होगा, इस वेद में तो संगीत की इतनी न महिमा है। और संगीत को कैसे हम एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि संगीत कैसे हमारे जीवन में मेडिसिन का काम करती है, एज ए हीलर हम संगीत को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि आज तक हम समझते आए थे कि संगीत मतलब हमारे मनोरंजन के लिए है, बट म्यूजिक हैज एन इनहेरेंट पावर नॉट जस्ट टू एंटरटेन एंड अपलिफ्ट बट टू हील। हील करने की क्षमता है संगीत में, इतनी ताकत रखता है। और इसीलिए जब हम छोटे बच्चे थे या अभी भी बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो विद्या की शुरुआत भी प्रार्थना से होती है। परमात्मा का आह्वान करने के लिए प्रार्थना की जाती है, मतलब भगवान जैसी ऊंची हस्ती को पुकारने के लिए भी संगीत का आधार दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि संगीत में कितनी न ताकत है, जो भगवान को बुलाने के लिए भी इस साधन का हम यूज करते हैं। तो हम आगे बढ़े कि संगीत कैसे यूज होता है हमारे जीवन में एज अ मेडिसिन, उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि म्यूजिक को एज अ थेरापी उपयोग करना कब से आरंभ हुआ। थोड़ी सी छोटी सी हिस्ट्री, जहां तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद उस दौरान जो योद्धाएं थे, जो लड़ाई करने गए थे, वो घायल होकर जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो उस युद्ध के बाद जो घायल हुए, जो शारीरिक और भावनात्मक आघात से पीड़ित थे, उन लोगों की हीलिंग के लिए कुछ संगीत शास्त्रियों ने हॉस्पिटल्स में जाकर संगीत बजाया। ये बात होगी 90s की, 1918, 1912 से लेकर 1947 तक के बीच की बात, कि जब युद्ध चल रहे थे और ऐसे जो घायल होते थे उनके लिए संगीत शास्त्रियों ने जाकर कुछ संगीत सुनाते थे, और देखा कि म्यूजिशियंस के इस संगीत के सामने पेशेंट्स ने इतनी अच्छी पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं दी और इतना सुंदर रिजल्ट मिला कि वो जल्दी से ठीक होने लगे। और उसके चलते फिर डॉक्टर्स ने और नर्सिंग स्टाफ ने गवर्नमेंट से ये अनुरोध किया कि ऐसी थेरापी होनी चाहिए हर हॉस्पिटल्स में, कि म्यूजिक से पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक हो जावे। और उसके बाद फिर कई जगहों पर धीरे धीरे म्यूजिक को एज अ थेरापी यूज करना शुरू हुआ। मेरे कहने का भावार्थ ये नहीं है कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करें, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ अगर म्यूजिक थेरापी को भी मिलाया जाए तो मरीज बहुत ही जल्दी ठीक होकर घर जा सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो। और ना केवल पेशेंट्स की बात है, लेकिन आम तौर पर भी जब हम संगीत सुनते हैं, तो आप सबने अनुभव क्या होगा कि म्यूजिक सुनने से हम अगर थके हुए होते हैं तो कितना रिलैक्स हो जाते हैं, मन को सुकून मिलता है। तो संगीत हमारे जीवन में हमारे लिए न सिर्फ मनोरंजन का एक साधन है, लेकिन हमारी जीवन, हमारा व्यक्तित्व बनाने के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए एक बहुत जिम्मेवार अंग कहे, एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को भी बनाता है और हमें हील भी करता है। आपको हम हिस्ट्री में ले चले, हमारी पौराणिक हिस्ट्री, हमारे इतिहास को अगर हम याद करते हैं, तो मुझे एक बहुत सुंदर कहानी नहीं लेकिन रियलिटी मैंने कहीं पढ़ी थी, और उसमें राजा अकबर, आप सब जानते हैं कि संगीत प्रेमी राजा था, तो अपने राज दरबार में बहुत सारे कवि और बहुत सारे गायकों को वो रखता था। उसमें से कवि मेघ का नाम शायद आपने सुना हो, बहुत बड़ा कवि था। किसी बात को लेकर, हम बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी को नहीं करेंगे, किसी बात को लेकर राजा अकबर ने कवि मेघ को मृत्यु दंड की सजा दी, और वो सजा ऐसी थी कि राज राज के बीच के मैदान में कवि मेघ को खड़ा किया जाए और पागल हाथी के पैरों के नीचे उसे कुचला जाए। तो जब ये सजा सुनाई तो सब तो बहुत घबरा गए थे, लेकिन कवि मेघ बड़े निश्चिंत थे और मुस्कुरा रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि संगीत की क्या कमाल है, और वो सारे राग जानते थे, सब कुछ उनको पता था कि किस राग का उपयोग, किस ध्वनि का उपयोग कब किया जा सकता है। और जब वो घड़ी आई, मैदान में पागल हाथी को लाया गया जो बिल्कुल जोश में था मारने के लिए, तब कवि मेघ ने इतनी सुंदर राग रागिनियां छेड़ी कि वो जो हाथी था वो उसी स्थान पर शांत होकर बैठ गया, बिल्कुल शांत हो गया, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी जान बचाई, मृत्यु से अपने आप को छुड़ाया। तो इतिहास में ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमें जानने को मिलती हैं कि संगीत में इतनी पावरफुल शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी संभव कर सकती है। बैजू बावरा, इसका नाम तो सबने सुना होगा। कहा जाता है कि जब वो रागिनी छेड़ते थे, राग गाते थे, तो तपती हुई धूप में भी बारिश होने लगती थी। जब बैजू बावरा मल्हार राग छेड़ देते थे तो बारिश होने लगती थी। तानसेन जी का नाम भी सबने सुना होगा। एक बार की बात है, मैंने कहीं पढ़ा था कि तानसेन जी दीपक राग का अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे उस राग का, और गलती से, देखो हम किसी भी मेडिसिन को गलत रीति से भी लेते हैं ना, तो उसका साइड इफेक्ट्स भी होता है। तो उसी प्रकार तानसेन जी एक बार दीपक राग की प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, और गति भंग होने की वजह से अचानक से सुरों में गति भंग हो गई और पूरा शरीर उनका काला हो गया, तो बीमार हो गए। लेकिन उसके बाद राज्य की महिलाएं जो राग रागिनियां जानती थी, उन्होंने मिलकर तानसेन जी के ऊपर राग छेड़कर और फिर उनको ठीक किया, मतलब संगीत से ही उनको ठीक किया था, ये भी हिस्ट्री है। तो संगीत में बहुत ताकत है। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, किसी भी स्थान पर आप जाओगे और वहां का जो संगीत होता है कितना सौम्य होता है, मन को सुकून देने वाला होता है, जिससे ना केवल मनुष्य आत्मा लेकिन प्रकृति भी सुकून और सुखद अनुभव करती है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे कि किस प्रकार का संगीत हमें जीवन में सुनना चाहिए और किस प्रकार का संगीत हमें उपयोगी है। कई ऐसे संगीत शास्त्र के विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि जो सौम्य संगीत होता है वो आत्मा, मन और शरीर के विकास के लिए बहुत सहायक होता है, सौम्य संगीत। जबकि हम देखिए पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है और वहां जो संगीत की उत्पत्ति हुई, जिसमें जोर जोर से ड्रम पीट कर, गला फाड़ कर गाना और ऊ अक्षर का उपयोग गीत में ज्यादा करना, ये हमारे जो संगीत शास्त्र के विशेषज्ञों हैं उनका कहना है कि ये जो अक्षर ऊ अक्षर वो लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, ये तामसिक कामिक ऐसी वृत्तियों को जन्म देता है। और इसलिए अगर हम भी सुबह सुबह जैज म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक सुनते हैं तो वो हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए उचित नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान रखिए आप कैसा संगीत सुनते हैं। हमारा शास्त्रीय संगीत, भारत का जो प्राचीन संस्कृति का संगीत है, वो बहुत सुंदर संस्कृति प्रदर्शित करता है और उसमें इतनी न ताकत है जो हमारे मानसिक विकास के लिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको एक बहुत ही रियल एग्जाम्पल कि संगीत कितना पावरफुल असर छोड़ता है हमारे ऊपर, कि पेरिस की बात है कि जब ओलंपिया हॉल में, ओलंपिया म्यूजिक हॉल जो पेरिस में है, वहां पे रॉक एंड पॉप म्यूजिक से बनी हुई एक बहुत सुंदर कॉन्सर्ट था, बहुत सालों पहले की बात है। और इस हॉल में रॉक एंड पॉप म्यूजिक के द कॉन्सर्ट रखा हुआ था और उसमें इस पॉप म्यूजिक से बनी हुई एक नई कंपोजिशन की धुन थी, एक नया कंपोजिशन था जो वो लोग प्रेजेंट करने वाले थे। लेकिन इसका पिच और फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी थी कि जैसे ही उन लोगों ने वो प्रेजेंट करना शुरू किया उस हॉल में, तो वो फ्रीक्वेंसी ऐसी थी जो आक्रामक तामसिक कामिक वृत्तियों को उत्तेजित करे, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो हॉल में लोग बैठे हुए थे, उस हॉल में जितने भी लोग थे उनकी विचित्रता दिखनी शुरू हो गई। वो लोग इतना अभद्र व्यवहार करने लगे, कुछ निर्वस्त्र होकर कुछ गलत गलत काम करने, मतलब बहुत कुछ ऐसे चीज हुई कि तुरंत ही पुलिस को बुलाना पड़ा और वहीं पे उस शो को, उस कॉन्सर्ट को रोका गया और फिर परमानेंटली गवर्नमेंट ने उस धुन पे बैन लगाया। क्यों उसके बाद रिसर्चेस भी बहुत सारे हुए कि इस धुन को सुनकर ऐसा क्यों हो गया, पूरे हॉल का माहौल ऐसा क्यों हो गया। तब फिर पता चला, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और आज भी हो रहे हैं कि संगीत का और उस संगीत में जो शब्द यूज हुए थे उसका लोगों के ऊपर इतना तीव्र प्रभाव पड़ा उसी समय जो ऐसा व्यवहार सब करने लगे। तो सोचिए कि हम जो सुनते हैं रोज, क्या वो सही सुनते हैं? क्योंकि संगीत तो बहुत बहुत हमारे जीवन के कहेंगे अंदर का हिस्सा है जो हमें तुरंत ही टच करता है, और वो जो हम सुन रहे हैं उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो किस प्रकार का संगीत हमें सुनना चाहिए, ये जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि संगीत हमारा व्यक्तित्व बनाता है और बहुत बड़ा रोल है संगीत का हमारा व्यक्तित्व बनाने में। देखिए, पहले के जमाने में नवरात्रि होती थी, तो उस नवरात्रि में माता के गरबे गाए जाते थे, है ना, माँ के गरबे गाते थे और कितनी भावना से लोग गरबा घूमते थे। और आजकल आप नवरात्रि में जाओ, जो गरबा गाते हैं कहीं पे माता के गरबे नहीं होते हैं, फिल्मी गानों पर गरबे होते हैं। और इसीलिए आजकल जो नवरात्रि होती है उसमें न्यूसेंस बढ़ गया है, वाइब्रेशंस का असर होता है ना। इसलिए एक बारी एक वीडियो मेरे पास आया जिसमें जो, हाँ, मैं कोई रियलिटी शो का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक रियलिटी शो का ऑडिशन चल रहा था जिसमें बच्चे आते हैं, गाते हैं, ऑडिशंस देते हैं। एक छोटी सी 6 साल की बच्ची ऑडिशन दे रही थी, और वो जैसे ही आई उसने ऐसा गीत गाया, मैं बिल्कुल ही शॉक रह गई कि ये क्या, कैसा गीत, इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी भारी भरकम, इतनी खराब शब्द वाला गीत जिसको हम आमतौर पर आइटम सॉन्ग कहते हैं, 6 साल की बच्ची और इतनी अदा के साथ गा रही है, उसके व्यक्तित्व में भी वो विकारीपन झलक रहा था। तब उस समय मैं देख रही थी उस वीडियो में कि जजेस की बहुत शॉक हो गए थे, और उन्होंने जब पूछा उस बच्ची को कि आपने ये गीत कहाँ से सीखा, क्योंकि उसका मीनिंग भी 6 साल में पता होना, इट्स लाइक ना, हम छोटे थे हमको तो कुछ पता भी नहीं चलता था, और आजकल के बच्चों को बहुत कुछ पता चलता है। तो जब उसको पूछा कि आपको ये गीत किसने सिखाया, तो उन्होंने कहा मेरे घर में ऐसे ही गीत बजते हैं। तो देखिए, हमारा, हमारे घर का कल्चर, हमारे घर में किस प्रकार का संगीत बजता है, उसका प्रभाव हमारे छोटे छोटे बच्चों पर और उनके व्यक्तित्व पर भी कितना गहरा पड़ता है। तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अपने घरों में किस प्रकार का संगीत बजाते हैं। अभी बात करें कि संगीत एज अ मेडिसिन कैसे यूज हो, तो आजकल रोगों को ठीक करने के लिए कई सारी पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है म्यूजिक की, और हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे म्यूजिक थेरापी से कई सारे पेशेंट्स को ठीक किया जा रहा है। तो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, लेकिन चिकित्सा के लिए इसका उपयोग, अगर प्राचीन काल को हम फिर से एक बार देखें तो मल्हार राग वर्षा के लिए गाया जाता था, दीपक राग दीपक को जगाने के लिए गाया जाता था। तो उस समय के संगीत से कुछ लाभ होता था, दीपक राग गाया और दीप जगते थे। और आजकल तो, आजकल का म्यूजिक अगर बजा दो, जगे हुए दीपक भी बुझ जाते हैं, ऐसा संगीत। मारू संगीत का उपयोग बहुत होता था पहले के जमाने में, जब मारू संगीत बजाते थे, युद्ध के समय बजाया जाता था। तो जब वो संगीत बजाते थे तो योद्धाओं के मन से मृत्यु का भय जो होता था वो दूर हो जाता था। तो ऐसे ऐसे संगीत का कितना सुंदर ना उपयोग करते थे, और आज क्या हो गया है, बसंत ऋतु होती थी तो बसंत राग गाते थे, है ना। सुबह सुबह हम अपने दादा पर दादा से अगर पूछते हैं ना, तो वो भी कहेंगे कि सुबह सुबह पहले के जमाने में मानसिक शुद्धता के लिए भारती है, भैरवी राग है, ये संगीत बजाया जाता था। आज भी उत्तर प्रदेश में, मुझे एग्जैक्टली वो जगह का नाम नहीं पता, कुछ विशेष वाद्य से सर्प का विष दूर किया जाता है। कोई विशेष वाद्य है उसको बजा करके किसी को अगर सांप डसा हो, यूपी के कुछ विस्तार में, कुछ गांव में ये आज भी यूज होता है, और कुछ प्रांतों में, हमारे भारत देश के ही कुछ प्रांतों में आज भी थाली बजाकर विशेष रोगों का उपचार होता है। चलो हम याद करते हैं, 2 साल पहले की बात, कोविड का पीरियड शुरू हुआ था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, सब इस टाइम पर एक साथ मिलकर थाली और चम्मच से, या फिर कोई ना कोई साधन से ध्वनि को फैलाएंगे। हम सभी ने वो चीज की थी, हर एक, हम सब लोग घर के बाहर आकर, कोई घंट बजा रहा है, कोई थाली और चम्मच से ध्वनि क्रिएट कर रहा है। ये क्या था पता है, ये कोई ऐसे ही नहीं कराया था, ये थेरापी है। उस समय पूरे देश में एक तो भय का वातावरण था, और साथ साथ जैसे हम बात करें कि संगीत एज अ मेडिसिन भी यूज होता है, तो जब उस समय सभी इकट्ठा मिल करके थाली और चम्मच या फिर बैल बजा रहे थे, तो एक ऐसी ध्वनि वातावरण में तरंगित हो रही थी जो हर मनुष्य आत्मा का भय भी दूर करे और रोग का उपचार भी करे। तो कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो हमें हील करती हैं। तो उस कोविड पीरियड में आपने जो बजाया, बजाकर हमने छोड़ दिया, लेकिन ये एक थेरापी थी जो यूज की गई थी हील करने के लिए। अमेरिका के मशहूर साइकियाट्रिक है डॉक्टर जॉर्ज स्टीवेंसन, उन्होंने भी बहुत सुंदर रीति से संगीत का कैसे मन पर असर होता है, बहुत अच्छी किताब भी लिखी है और बहुत सुंदर रीति से बताया है, आप अगर चाहें तो सर्च करके पढ़ सकते हैं। आजकल मैंने अभी अभी कहीं से देखा कि अमेरिका में जो गाय होती हैं, गायों को संगीत सुनाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। तो म्यूजिक का उपयोग बहुत ही क्रिएटिव रीति से, एज ए हीलर रीति से उपयोग हो रहा है आजकल। वो एक तिब्बती कटोरा आता है, तिबेटियन बॉल, जिसमें वो एक ध्वनि क्रिएट करते हैं, तो मैक्सिमम मैंने देखा है स्पा सेंटर्स में और मसाज सेंटर्स में ये ध्वनि को क्रिएट करके रिलैक्सेशन के लिए उपयोग किया जाता है। एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, अभी जो आपको डिफरेंस देखना है ना अपने जीवन में, ये जरा चेक कीजिएगा। एक बहुत सुंदर रिसर्च था कि एक पौधा मंदिर में रखा गया और एक पौधा क्लब में रखा, जहाँ डिस्को वगैरह होता है, तो कुछ समय तक एक जैसा सूर्य प्रकाश मिल रहा है, एक जैसा पानी मिल रहा है, एक ही रीति से उसे पालन किया जा रहा है। लेकिन कुछ 15-20 दिनों के बाद जब दोनों को देखा गया, तो दोनों जो पौधे थे उसमें बहुत बड़ा फर्क था। जो मंदिर वाला पौधा था उस पौधे में बहुत अच्छे से विकास हुआ था, और जो वो क्लब वाला जहाँ पे डिस्को वगैरह होता है, ऐसे गाने बजते हैं, उसको जब देखा गया तो वो बिल्कुल मुरझाया हुआ था। तो इस रिसर्च से भी पता चलता है कि कैसे संगीत और संगीत के द्वारा क्रिएट हुआ वाइब्रेशन वातावरण का प्रकृति के ऊपर भी असर करता है। तो जो प्रकृति पे असर करता है वो मानव आत्मा के ऊपर भी तो असर करेगा। अभी अभी एक रिसर्च सामने आया, अभी अभी एक न्यूज़पेपर में बात आई थी कि एक बच्चा कोमा में था और उसकी माँ लोरी गाने लगी, उसको बहुत प्यार से दिल से पुकारने लगी और वो कोमा से जल्दी से बाहर आ गया। तो देखो संगीत की शक्ति, आप किस रीति से, किस इंटेंशन से इस संगीत का उपयोग करते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक किसी ने एक बहुत बड़े महात्मा साधु संत से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि महात्मा जी आप बताइए कि जो जगराता होता है ना, जिसमें जागरण करते हैं और माता के गरबे गाते हैं और माता को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, जगराता में जब हमें बैठना होता है रात को तो हमें नींद आती है, लेकिन अगर हम लोग डिस्को नाइट जाते हैं, वहां पे उस सॉन्ग्स पे धम धम ते सॉन्ग्स पे हम सुन के डांस करते, तो वहां पे हमें बिल्कुल नींद नहीं आती, पूरी रात जाग सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्या फर्क है? तो उस महात्मा ने बहुत सुंदर आंसर दिया। उन्होंने कहा कि नींद तो फूलों की चादर पर आती है, कांटों की शैया पर नहीं आ सकती है। तो इसका भावार्थ क्या है कि जो संगीत मन को सुकून देने वाला हो, उसमें आपको नींद का अनुभव हो रहा है। तो संगीत बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे जीवन में डालता है। आजकल की बीमारियां आप देखो साइकोसोमेटिक है, और विभिन्न आयु के लोगों पर अलग अलग रीति से बीमारी को ठीक करने के काफी रिसर्चेस म्यूजिक के द्वारा हो रहे हैं। चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे माइग्रेन है, चाहे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंजोमिया है, स्किजोफेनिया है, स्लीप एपनिया है, पार्किंसन है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसको म्यूजिक से ठीक किया जा रहा है। आपको बताएं, हमारे शरीर में दो ब्रेन है, एक तो मस्तिष्क में जो है वो तो है, दूसरा है हमारा पेट। तो ऐसा वैसा खा लिया, पेट खराब हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा वैसा यहाँ भी खा लेते हैं और हमारा शरीर, आप देखिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आप अपना डाइट ले रहे हैं, बहुत अच्छा खाना आप खा रहे हैं और आप हेल्दी हैं, लेकिन जिस दिन आपने बहुत अच्छे से खाना खाया है, बहुत सात्विक अनाज, सात्विक फूड आपने लिया है जिसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी टेंशन वाली बात आ जाती है, तो क्या होता है, एसिडिटी और गैस क्रिएट हो जाता है। तो वो कहाँ से हुआ? भोजन जो पेट में गया है उससे नहीं हुआ, वो कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज कुक होती है। तो हमें लगता है कई बार कि हमने ये गाना सुन लिया, हमने ये म्यूजिक सुन लिया, गाड़ी में जा रहे थे, रेडियो पर सुन लिया, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोचते हैं ना हम कई बार। जब कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे गाने नहीं सुनो जो हमारे मन को, जो हमारे मन के लिए ठीक नहीं है, तो कहते हैं अरे क्या है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, गाड़ी में जा रहे हैं रेडियो में सुन लिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब इस कान से अंदर जाता है ना, तो यहां से निकलता नहीं है, बीच में बहुत बड़ा मशीन है, उसके अंदर घूमता है और सब कॉन्शियस माइंड उन सारे शब्दों को छाप देता है। वो बात हम बाद में करते हैं कि कैसे उसको ठीक किया जाए और क्या उसका प्रभाव होता है। उससे पहले कुछ ऐसे रोग है, आप अगर नोट डाउन करना चाहते तो कर सकते हैं, कि कुछ ऐसे रोग है जिसको ठीक करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे राग है बने हुए, हमारे भारतीय संगीत शास्त्र में उसका उपयोग होता है। जैसे कि हृदय से संबंधित कोई रोग, किसी को बाईपास कराया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो इस रोग के अंदर राग दरबारी, आपने शायद सुना होगा, राग दरबारी और राग सारंग से हृदय रोगों को ठीक किया जाता है। तो आप सितार वादन जो होता है, सितार का जो ध्वनि होता है, उसको राग दरबारी में सुनेंगे तो हृदय के रोगों में हमें बहुत लाभदायक रहता है। वैसे ही इंजोमनिया यानी कि अनिद्रा, तो ये रोग हमारे जीवन में होने वाले सबसे साधारण रोगों में से एक रोग है। कई लोग होंगे जिसको नींद नहीं आती है, तो इस रोग में भैरवी और राग सोहनी, ये दो रागों को बजाया जाता है जहां पे म्यूजिक थेरापी होती है वहां, और शांत चित बिस्तर पर लेटे हुए इस दोनों रागों में, कौन सा, भैरवी और सोहनी, तो ये दोनों राग जो है वो बांसुरी वादन में अगर सुना जाए, सोहनी और भैरवी राग को, तो बहुत लाभकारक रहता है। बिल्कुल वैसे पित्त की समस्या बहुत सारे लोगों को होती है, तो खमाज राग एक ऐसा राग है जो हमारे पित्त की समस्या को ठीक करता है। कई लोगों को एनीमिया, कमजोरी बहुत होती है, तो एनीमिया से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए भी जय जयवंती राग है, जिसको सुनने से, जिसकी ध्वनि सुनने से हमारी कमजोरी ठीक होती है, मन में उमंग उत्साह फील होता है। छोटे बच्चों के लिए अगर उनकी मेमोरी पावर बढ़ानी है, याददाश्त बढ़ानी है, तो शिवरंजनी राग बजाया जाता है, और शिवरंजनी राग सुनने से बहुत लाभ होता है। वीणा की ध्वनि से उत्पन्न हुआ वो राग याददाश्त बढ़ाने में बहुत लाभदायी होता है। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसका निदान, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे कोई भी ऐसे रोग हैं जिसको ठीक करना आप चाहते हैं, तो म्यूजिक थेरापी बहुत हमें लाभकारक है, बहुत ज्यादा। मुंबई के एक अस्पताल और नागपुर के डॉक्टर की टीम ने संगीत का जो प्रभाव है ना, वो कितना गहरा होता है, उसका एक रिसर्च किया, जिसका अभी अभी मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा। तो उन्होंने पाया कि ड्यूटी के दौरान जो दिल के दौरे पड़ने के मामले होते थे, ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, बहुत लोड है, बॉस भी डांटता है, उस ऐसी ऐसी जगहों पर, विशेष करके जिन पुलिस थानों और अनियत समय तक काम करने वाले जो स्थान होते हैं, वहां पे जब संगीत धीमी आवाजों में बजाया गया और रिसर्च हुआ, तो ये पाया कि जहाँ पे मानसिक समस्या बहुत रहती है, ऑफिसों में, पुलिस थानों में, हॉस्पिटल्स में, वो बहुत असरदार साबित हुआ और उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब देखिए, आजकल स्पा सेंटर्स हैं, आप किसी मॉल में जाएंगे, किसी जिम में जाएंगे, तो धीमी आवाज में आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगा, क्योंकि फिजिकली वर्क बहुत है, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ म्यूजिक चल रहा है तो मन हल्का रहता है। और इसीलिए आप मॉल में, कई शोरूम्स में जाते हैं तो धीमा धीमा म्यूजिक आप सुनते हैं, इट्स म्यूजिक थेरापी, नथिंग एल्स। एरोबिक्स, जुम्बा जो एक्सरसाइज कराते हैं, वो सब क्या है, म्यूजिक थेरापी के साथ शरीर को ठीक रखना, मतलब म्यूजिक की बीट्स के ऊपर शरीर को हिलाना, और कितना उपयोगी है देखो संगीत। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आप फूंक से बजाने वाले जो वाद्य होते हैं, जैसे कि बांसुरी है, शहनाई है, माउथ ऑर्गन है, वो हमारे फेफड़ों को मजबूती देता है। तो संगीत बहुत ही पावरफुल है, जो हमारे शरीर को ठीक करने के लिए उपयोगी है। अभी दो फ्रीक्वेंसी आपको हम बताएंगे, जो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए एवरीडे रूटीन में सुनना बहुत अच्छा है। आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, तो उस फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला है 432 हर्ट्ज का म्यूजिक, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। आप कहीं थके हुए आए हैं तो 430 हर्ट्स, 432 हर्ट्स का जो म्यूजिक है, उस फ्रीक्वेंसी का, उसे लगा दें और आराम से बैठे, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा और स्ट्रेस भी रिलीफ हो गया। और साथ साथ जिसको इम्यूनिटी पावर कम है, कोविड के बाद तो कई लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है ना, तो उनके लिए इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए, हीलिंग एनर्जी अंदर जनरेट करने के लिए 532 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी का संगीत अगर सुना जाए तो ह्यूमन इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार संगीत हमारे जीवन में न केवल मनोरंजन, लेकिन हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी बहुत बहुत लाभकारक है। मैं आपसे एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस पर्सनल शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज में होते हैं तो संघ का प्रभाव होता है, तो जो हमारे अंग संघ के लोग होते हैं, वो जो सुनते हैं वो हम भी सुनते हैं। तो मेरे साथ वाले जो लोग थे, वो लोग सैड सॉन्ग्स बहुत सुनते थे, बहुत ही ज्यादा सुनते थे। तो धीरे धीरे मुझे भी वो आदत होने लगी कि मैं भी सैड सॉन्ग सुनने लगी। इसका परिणाम क्या होगा, उसका अंदाजा मुझे नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। कुछ समय के बाद, 1-2 महीने के अंदर, क्या होता था कि जब भी मैं कोई सॉन्ग सुनती, ऐसा सैड सॉन्ग, तो मैं अपनी जीवन की कोई ना कोई घटना को उसके साथ जोड़ के रोने लगती थी। और आप में से कई लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि कोई ऐसा दुखी वाला, सैड वाला सॉन्ग सुन रहे हैं और आप अपने पास्ट की, बहुत बरसों पहले की कुछ ऐसी दुखद घटना को सामने लेकर आएंगे और फिर रोने लगेंगे। और फिर तो एक ऐसा समय आया कि बिना संगीत, बिना वो सॉन्ग सुने, कई बार ऐसे ही बैठे हैं, मूड ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, बिना कारण रोना आ रहा है। आप में से भी कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि हम बैठे हैं लेकिन कोई रीजन ही नहीं है, आज मूड ही ठीक नहीं। कोई पूछता है, क्या हुआ, आज क्यों ठीक नहीं लग रहे हो, तो हम कहते हैं ना, पता नहीं, कोई रीजन नहीं है लेकिन मन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, रोने का मन कर रहा है। ये एकदम से मन नहीं होता है, आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं से कभी ना कभी भरी हुई है ना, वो इस प्रकार से सामने आती है। तो फिर जब ऐसा होने लगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार मूड ऑफ हो जाता है। तो उसी समय के दौरान जब मैं माउंट आबू विजिट की थी, तो बहुत बड़े भाई हैं वहां के, उन्होंने बहुत सुंदर बात मुझे बताई। हम बात कर रहे थे ऐसे ही म्यूजिक की, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि ये बहुत रिस्की है अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, क्योंकि वो गीत सिर्फ गीत नहीं है, वो आपके जीवन में जो गाया जा वो गीत जो गाया है किसी ने भी, वो घटना आपके जीवन में घटने लगती है जब आप उस गीत को बार बार सुनते हैं। और आपने ये लाइन सुनी होगी कि जैसा हम देखते हैं वैसा बनते हैं, है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसा हम सुनते हैं वैसे हम बनने लगते हैं। और तभी मुझे समझ आया कि कैसे उस गानों को सुन करके मैंने अपने व्यक्तित्व को कितना शिफ्ट कर दिया। सदा खुश रहने वाले इतना मूड ऑफ कैसे होने लगा। इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल, आप चेक कीजिए कि आप अपने पूरे दिन में कैसे कैसे गीत सुनते हैं। हम गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ ऐसे गीत भी नहीं सुनने चाहिए जिसके शब्दों की क्वालिटी बहुत डिप्लीटेड है, जिसके शब्दों में सौम्यता नहीं है, जो शब्द हमारे मन के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि वो एक एक शब्द गीत के हम समझते हैं कि यहाँ से यहाँ, नो, वो कभी नहीं होता है, वो यहाँ छपता है। और कभी ना कभी वो जीवन में सबकॉन्शियस माइंड खोल के बाहर हमारा व्यक्तित्व बनाता है। हम कई बार सोते हैं रात को, स्वप्न आते हैं ना, हम कहते हैं अरे बहुत बचपन का सपना मेरे को आज आया, मैं बचपन में जिसको मिलते थे, हम बचपन में जो हमारे मित्र थे वो सब आज हमारे सपने में आए। कितने साल बीत गए हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड ने वो स्टोर करके रखा है ना, तो वो आज भी वो चीजें लाएगा। ठीक वैसे ही संगीत, जिस प्रकार संगीत क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो आप ले रहे हो बाहर से, तो इंफॉर्मेशन ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे मन की शक्ति को बढ़ाए। तो संगीत ऐसा होना चाहिए जो हमारे मन की शक्ति को बढ़ाए, हमारे विचारों की क्वालिटी को श्रेष्ठ करे। आपको एक बात बताएं कि पहले हम जब ब्रह्मा कुमारीज में तो बचपन से हैं, लेकिन जब हम स्कूल कॉलेज में थे तब हम बाहर के कॉन्सर्ट्स भी करते थे, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स करते थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट। तो उस कॉन्सर्ट्स में तो फिल्मी गीत गाते थे, तो ये अनुभव किया कि जब वो गीत गाते थे, उस समय की बात मैं आपको बताती हूँ, जब वो गीत फिल्मी गाने हम गाते थे और उसके बाद घर आते थे, क्योंकि इस ज्ञान में चल रहे थे, ब्रह्मा कुमारी इसमें बचपन से थे तो ज्ञान पूरा था, और सेंटर्स पे भी जाते थे, आश्रम पे भी जाते थे, तो वहां परमात्मा की याद के गीत गाते थे। जब भी हमारी दीदी कहती थी कि आप कुछ गीत सुनाओ, अच्छा सा भजन सुनाओ, तो वहां जब हम गाते थे और जो वो कॉन्सर्ट में गाते थे, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे फील हुआ। क्या फील हुआ? कि वो जो गाती थी बाहर वालों के लिए फिल्मी गाने, उसमें सामने वालों की नजर मेरे प्रति क्या है? क्योंकि हम जब बाहर के सिंगर्स गाते हैं स्टेज पे, तो कई लोग सीटी बजाते हैं, कई लोग तालियां बजाते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत बहुत गलत लगता था। और जब हम सेंटर पे, आश्रम पे गीत गाते थे, परमात्मा की याद का संगीत जब हम सबके सामने पिरोसते थे, तो सबकी आंखों में परमात्मा की याद होती थी। तो जब ये चीज का डिफरेंस हमने देखा उस समय, बहुत साल हो गए इस बात को, तो हमने डिसाइड किया कि आज के बाद ये कभी नहीं होगा कि एक इस मुख से वो गीत कभी बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं चाहती कि जो परमात्मा ने मुझे विशेषता दी है संगीत की, उस संगीत को मैं इस कार्य में यूज करूं जिससे लोग परमात्मा से जुड़े, ना कि ऐसे कि जिससे लोग सीटी बजाए, जिससे लोगों के मन में विकारी भावनाएं जागे। नहीं, हमारे मुख से निकला हुआ गीत या संगीत लोगों को परमात्मा से जोड़े। फिर वो डिसाइड किया और फिर वो सब छोड़ दिया। तो जैसे समझ आती है ना कि हमें किस प्रकार से इन छोटी छोटी चीज का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो आज तक शायद आपने नहीं जाना होगा कि गीत से भी हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो जब हमें पता चला कि सैड सॉन्ग्स सुनने से इतना बड़ा फर्क जीवन में आ गया, तो उस दिन से लेकर आज तक कभी भी सैड सॉन्ग ना कभी गाया है, ना बनाया है, ना कभी मोबाइल में स्टोर किया है। कहीं बज रहा हो तो भी बंद करवा देते हैं, क्योंकि पता है कि वो व्यक्तित्व बनाएगा और मुझे अपने जीवन में ऐसा व्यक्तित्व नहीं चाहिए। आजकल के गीत सारे रोतलू गीत होते हैं, आप देख लो, धोखे वाले गीत, दर्द वाले गीत, कितने मतलब पूरा डिपार्ट होने वाले गीत। ऐसे गीतों को अगर आप सुनेंगे तो जीवन में वो सब घटता जाएगा और फिर हम पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई बहन हम अपने साथ खुद ही गलत कर रहे हैं। ऐसा संगीत सुन रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन अपने मन में डाल रहे हैं जो हमारे मन के लिए, हमारे तन के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है। हम जब अपना क्लिनिक चलाते थे तो हमारे क्लिनिक में कंटिन्यूअस परमात्मा की याद के भजन चलते थे। तो पेशेंट्स जब आते थे तो आधा दर्द तो वहीं खत्म हो जाता था। कहते थे, हम ये पूरा गीत सुन के जाए बहन जी? हाँ, कहते थे जरूर। तो कितना ना पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है जब आप एलिवेटेड सॉन्ग, चाहे मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, चाहे परमात्मा की याद के गीत हैं, मन को सुकून देने वाली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल आप बजाते हैं, तो वातावरण को अपलिफ्ट करता है। और आजकल तो दुनिया का वातावरण इतना 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 ज्यादा निगेटिव होता जा रहा है, इतना डिप्लीटेड, इतना भय से ग्रसित लोग हैं, कि हमें उस वातावरण में अगर जीना है तो हमें ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर प्रयोग है जो हम रोज करते हैं। घर में सुबह जब आप उठते हैं, सुबह उठकर आपको बहुत लो वॉल्यूम में ओम ध्वनि चलानी है, बहुत ही धीमी आवाज में। जैसे आप मॉल में जाते हो, कितनी धीमी आवाज में आप सुनते हैं, बिल्कुल वैसे। तो वो ओम ध्वनि पूरा दिन चलती रहे। जब आप रात को सोते हैं तो बंद करके सो जाइए, लेकिन वो जो ओम ध्वनि पूरे घर का वातावरण बनाएगी ना, तो कोई आपके घर में आएगा तो कहेगा, ये घर घर नहीं लग रहा है, ये घर मंदिर लग रहा है। इतनी पावरफुल शक्ति है ओम ध्वनि में। तो हमारे घर में गीत भी ऐसे बजाने हैं जो शक्ति को बढ़ाए, वातावरण की शक्ति को बढ़ाए, है ना? तो भोजन आप बना रहे हैं, भोजन भजन सुनते हुए बनाइए, देखना उस भोजन में इतनी शक्ति, इतनी न ताकत इसमें मिलेगी, क्योंकि आप परमात्मा की याद की भजन लगाकर सुनते हुए भोजन बना रहे हैं और वो एनर्जी उस वातावरण में क्रिएट हो रही है। तो एनर्जी जब उस भोजन में जाएगी और वो भोजन खाने वाले फिर कैसे होंगे, उनके मन कितने अच्छे होंगे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हमेशा ध्यान देते रहिए। आप देखिए, देवी देवताओं को देखा है, उनके हाथों में भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाता है। ऋषिकेश के हाथ में पंचजन्य शंख दिखाया है, शंकर जी के हाथ में डमरू दिखाते हैं, श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी दिखाते हैं, सरस्वती जी के हाथ में वीणा दिखाते हैं। तो संगीत तो इतना हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से। तो इसलिए हमें ऐसे संगीत का चयन हमें अपने जीवन में करना है जो संगीत हमारी जीवन की क्वालिटी को बहुत ऊंचा बनाए। तो ऐसे गीत नहीं सुनना जो गीत के शब्द बहुत बेकार होते हैं, जो गीत के शब्द बहुत नेगेटिव एनर्जी वाले और अभद्र होते हैं। ऐसे गीत सुने, ऐसे गीत गाएं और ऐसे ही गीत बजाएं जो आपको, आपके परिवार को सुख, सुकून, शांति और खुशी दे। और हमारा भविष्य भी फिर उसी के आधार पर बनता है, क्योंकि व्यक्तित्व वैसा बनेगा तो फिर कर्म भी ऐसे होते जाएंगे, है ना? तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का। आई ट्राई टू क्रिएट वैल्यू इन एवरीथिंग, इसलिए मैं संगीत को भी बहुत उस रीति से लेती हूँ कि हमें अपने संगीत को भी इतना पावरफुल बनाना है, क्योंकि संगीत तो पूरे दिन में कभी भी हम सुनते हैं, तो इतना पावरफुल बनाना है कि थोड़ा सा भी दिल शिकस्त हुए हैं, थोड़ा सा भी उदास हैं, तो इतने प्यारे से गीत जिसके अंदर परमात्मा की याद समाई हुई हो, वो सुनते ही मन एकदम प्रफुल्लित हो जाए। तो आप सबके लिए बस आज यही मैसेज है, विशेष करके कि अपनी संगीत का आप पूरे दिन में जो सुनते हैं उसका चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इट्स लाइक इन्फॉर्मेशन जो आप अपने मन में भर रहे हैं। तो कोई ऐसा गीत, कोई ऐसा संगीत हमें यूज नहीं करना है अपने जीवन में, संगीत की भी गरिमा को बनाए हम रखे, क्योंकि संगीत एक साधना है जिसको आज आजकल लोगों ने क्या बना दिया है, एक ऐसा साधन जो भगवान को खींच कर नीचे लाए। तो वो संगीत कितनी पावरफुल शक्ति है, तो इस शक्ति को जाने और उसका सही उपयोग हम अपने जीवन में करें और अपने आप को संगीत के माध्यम से परमात्मा से जोड़े। हर एक का कोई ऐसा नसीब नहीं होता कि अपने पैशन को अपने करियर में बदल दे, लेकिन मैं समझती हूँ बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो हमारा पैशन है उसी को आज करियर के रूप में कहो या सेवा के रूप में, मानव सेवा के रूप में हम पिरोस रहे हैं। बिल्कुल आप वैसे ही संगीत को बहुत अच्छे से अपने जीवन में लाएं और उसका उपयोग एज ए हीलर भी करें और अपने मनोरंजन के लिए भी करें। यही शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया।
ओम शांति बहन जी। अगर कोई भी भाई बहनों का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, तो बहन जी से आप पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस चैट पे डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनके जवाब बहन जी ने दे दिए हैं। आई थिंक बहन जी सभी को कोई सबके क्वेश्चंस एक क्वेश्चन आया है, उसमें वो पूछ रहे हैं व्हाट्स द साइंटिफिक इम्पैक्ट ऑफ ओम, ओम की ध्वनि का क्या इम्पैक्ट होता है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
अच्छा, अभी आ रही है। हाँ
हाँ जी,
जी, ओम की जो ध्वनि है ना, उसमें ओम के अंदर तीन अक्षर है, अ उ और म, और ये तीनों अक्षर बहुत पावरफुल अक्षर है जिसके उच्चार कंटिन्यूअस उच्चारण से, कहते हैं ओम जो है ना वो शिव का दूसरा नाम, मतलब बाहर वाले कहते हैं। तो ओम की ध्वनि जब उच्चारण होती है तो जो वाइब्रेशंस फैलते हैं वातावरण में, वो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते हैं, एनर्जी को बूस्ट करने वाले होते हैं। और किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि म्यूजिक का उपयोग हम वेट लॉस के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, आगे जैसे आपको बताया कि जो एरोबिक्स होता है, जुम्बा होता है, इसमें क्या होता है, म्यूजिक के बीट के साथ साथ एक्सरसाइज करनी होती है, तो उसके साथ आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन और है, आपने वैसे बताया था लेकिन वो फिर भी जानना चाहते हैं कि अगर रात में हमें साउंड स्लीप चाहिए तो किस तरीके का हम म्यूजिक सुने।
जी, तो जैसे आपको बताया था 432 हर्ट्ज का म्यूजिक जो आप सुनेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, 432 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी संगीत, उसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, उसको सुन करके आपके मन की विचारों की गति धीमी हो जाएगी और साउंड स्लिप होगी। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चाहे एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करें चाहे यूट्यूब पे, 432 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का म्यूजिक जरूर सुनिएगा, उससे बहुत मन शांत रहता है।
एक क्वेश्चन और आया है कि ये किसी बैंड के मेंबर हैं और वहां पे इन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, म्यूजिक प्ले करना होता है इंडी पॉप जॉनरे का। तो उन्होंने कहा कि ये इनकी मन की स्थिति को अफेक्ट करता है क्योंकि ये वायलिन प्ले करते हैं और जो इनकी इच्छा रहती है वो सोल म्यूजिक सुनने की रहती है, लेकिन वहां पे क्योंकि बैंड के मेंबर हैं और इस टाइप का म्यूजिक प्ले करना होता है तो क्या करें।
देखिए, हम टेम्पररी अपना करियर सोच करके अपने जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि वायलेंट म्यूजिक जो हमारे मन पर बहुत गहरा असर डालता है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। आप खुद का एक ऐसा सुंदर बैंड क्रिएट कीजिए जो तो सोलफुल म्यूजिक सबको सबको देवे, और धीरे धीरे होगा, लेकिन आप खुद क्रिएट कीजिए। क्योंकि मैं खुद समझती हूँ कि ये कॉम्प्रोमाइज अपने साथ नहीं करना चाहिए। कुछ समय के कुछ हम करियर को लेके बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ना। जीवन की खुशी और जीवन यही है कि हम अपने श्रेष्ठ जीवन को बनाना चाहते हैं ना, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हमें समझ करके, समझ शक्ति के आधार पर समझना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है हमारे लिए, तो छोड़ना पड़ेगा। और आप ऐसे म्यूजिक बैंड से जुड़िए जो सोलफुल म्यूजिक, और बहुत सारे ऐसे बैंड हैं जो बहुत सोलफुल म्यूजिक क्रिएट करते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ जाइए, लेकिन डोंट कॉम्प्रोमाइज।
और बहन जी एक रिक्वेस्ट आ रही है कि अगर आप अपने जो गीत गाए हैं उनमें से कोई एक दो लाइन अगर आप सबको सुना सकें, और खासकर हम उसके साथ हम ये भी चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप छोटी सी अगर मेडिटेशन कमेंट्री भी कराएं तो सभी भाई बहन, क्योंकि इसके लिए कई हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है।
हाँ जी, सॉरी। तो पहले मेडिटेशन कमेंट्री से हम शुरू करते हैं, उसके बाद गीत की 4-5 लाइन के साथ हम पूरा करेंगे। चलिए, कुछ क्षण के लिए बाह्य सभी बातों से हम अपने आप को मुक्त कर देते हैं। जो संसार की ध्वनि है उससे स्वयं को मुक्त कर दीजिए, और अपने आप को देखिए। दो नेत्रों के बीच मैं चमकती हुई शक्ति हूं। आत्मा जो शरीर की मालिक हूं, परमात्मा की दिव्य संतान, सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूं। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं, और परमात्मा का फरिश्ता सदा मुस्कुराता हुआ होता है। मेरे हर विचारों में श्रेष्ठता, मेरे हर बोल में श्रेष्ठता, और मेरे हर कर्म में श्रेष्ठता है। मैं अपने हर कर्म में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली महान आत्मा हूं। मेरी कर्मेंद्रियों से होता हुआ हर कर्म परमात्मा की याद में श्रेष्ठ बन जाता है। हे आँख जो भगवान का दर्शन किया करी, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करी, बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुझे मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर के भी अमर नाम है उस जीव का जगत में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन, अरे मैं तो गली गली हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मैं तो गली 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 हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन। ओम शांति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
ओम शांति बहन जी, आपका बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आपने इतना सुंदर सेशन दिया है और सबको संगीत का महत्व बताया, खास करके कि हमें किस तरीके का संगीत सुनना चाहिए। शुरुआत में अगर हम देखें, पहले जब हम अपने पूर्वजों को भी देखें तो उनका जीवन जो शुरू होता था वो बहुत ही सुंदर संगीत से परमात्मा की याद में शुरू होता था, और जब दिन ढलता था तब भी परमात्मा की याद से ही हम अपने दिन की समाप्ति करते थे। तो जैसे बहन जी ने बताया, ब्रह्मा कुमारीज में भी हम यही हमारा ये प्रिंसिपल रहता है कि जब सुबह हम उठते हैं तो हमारा जो दिन की जो शुरुआत होती है वो परमात्मा की याद से, और जो दिन का आखिरी संकल्प होता है वो भी परमात्मा की याद से ही होता है। और अगर आपको कोई भी हमारे प्रोग्राम्स या हमारे म्यूजिक या बहन जी के भी जो नए सॉन्ग्स आते हैं उनका सुनना हो उनके बारे में, तो हम यहाँ पे लिंक पोस्ट कर रहे हैं। आप उस लिंक पे अवेकनिंग टीवी चैनल है जिसपे आप अपने हमारे म्यूजिक को, सॉन्ग्स को भी सुन सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस को भी सुन सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को दे रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज की ये वेबसाइट है, आप इस पे जाके भी हमारे सेवा केंद्रों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप यहाँ पे अपने शहरों में जो राज्यों का मेडिटेशन सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं, उनके एड्रेसेस और उनके फोन नंबर भी आप देख सकते हैं। क्योंकि इतना सुंदर प्रेरणादायी सेशन को सिर्फ आप सुनने तक मत रखिएगा, इसे जीवन में और आगे बढ़ाइए और उसे अपने जीवन का एक सुंदर हिस्सा बनाइए। तो अगेन दामिनी बहन का, सभी भाई बहन एक हाथ की ताली से एक बार अपने सभी वीडियोस खोलकर एक बार अगर एक हाथ की ताली से बहन जी का सभी थैंक्स देंगे। ओम शांति बहन जी, दिल से आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने ये समय दिया और अपना यहाँ पे इतना सुंदर सेशन हम सबका लिया।
परमात्मा का शुक्रिया।
ओम शांति।
Thank you. हमसे ही तो है ये जहां।